ఓం శాంతి. ప్యారే బాప్ దాదా కి మిలన్ కి సీజన్ శురూ హో రహి హై. 2015-2016 కి ఇస్ సీజన్ కి ప్రథమ మిలన్ మే ఆప్ సబ్ పధారే హై. ఆప్ సబ్ కా బహుత్ బహుత్ స్వాగత హై. సంగమ్ శబ్ద హీ సిద్ధ కర్తా హై మిలన్ కో. మిలన్ మానా ప్రాప్తి, వియోగ్ బిచ్చడనా, గవానా, వో ఏక్ దిశా కే శబ్ద హై. ఔర్ సంగమ్ మిలన్ ప్రాప్తి జిస్కా అనుభవ హమ్ సబ్ కర్ రహే హై. పిచ్లే సీజన్ మే బాబా జో పఢా కర్ గయే, బీచ్ మే 6 మాస్ హోమవర్క్ కే లియే దియే, జరూర్ ఆజ్ మిలన్ కే పూర్వ దిన్ పర్, క్యోంకి కల్ బాబా సన్ముఖ ఆయేంగే, तो मिलन के एक दिन पूर्व जरूर पिछले सीजन में दिया हुआ होमवर्क याद आ रहा होगा. और 6 मास का हिसाब किताब भी बुद्धि के स्क्रीन पर सामने आ रहा होगा कि 6 मास वो होमवर्क हमने कितना और कैसा किया. बाबा ने पिछले सीजन में हम बच्चों को बहुत प्यार किया, वाह वाह की, बहुत उमंग उत्साह भरा. और साथ साथ बहुत जरूरी महत्वपूर्ण होमवर्क भी दिए. पिछले अक्टूबर मास में ही बहुत सुंदर होमवर्क बाबा ने दिया था कि अब तुम्हारा साकार रूप गायब हो जाए और तुम्हारा चमकता हुआ ज्योति स्वरूप सबको दिखाई दे. मोस्ट इंपॉर्टेंट होमवर्क था. बाबा पढ़ाते सबको एक सरीखा है, टीचर सब विद्यार्थियों को एक सरीखा ही पढ़ाते हैं, पर जो जितना होमवर्क करता है उतना ऊंचा नंबर वो प्राप्त करता है. ये एक होमवर्क ऐसा है जो पूरे ज्ञान का सार है. अल्टीमेट वही स्थिति हमें प्राप्त करनी है और आज के समय की वही मुख्य मांग है. कि जो हमारा शारीरिक साकारी स्थूल मिट्टी का स्वरूप है वो छिप जाए और मैं जो स्वयं वास्तविक में हूं, मेरा अपना अलौकिक दिव्य ज्योति स्वरूप सबको दिखाई दे। चमकता हुआ ज्योति स्वरूप और जिन्होंने ये अभ्यास किया होगा, महसूस किया होगा कि जैसे कमरे में ज्योति जगाने से लाइट की स्विच ऑन करने से सब कुछ प्रकाशमान हो जाता है, उस कमरे की हर चीज चमकने लगती है, हर चीज प्रकाशमान हो जाती है। इस प्रकार इस मिट्टी के स्थूल शरीर में जब मैं आत्मा अपने चमकते ज्योति स्वरूप की स्मृति में रहती हूं, उनकी कॉन्शियस रहती हूं, तो नेचुरली पूरा शरीर, हर अंग, हर कर्मेंद्रिय प्रकाशमान हो जाते हैं, एक तेज और आभा उसमें भर जाते हैं। और ये अलौकिक प्रभाव मैं आत्मा अलौकिक हूं, दिव्य हूं, ज्योति हूं, शक्ति हूं। शरीर तत्व है, मिट्टी है, तो जैसे ही हम अपने अलौकिक स्वरूप के स्मृति में स्थित होते हैं, वो अलौकिक आभा, रूहानियत दूसरे हमसे महसूस करते हैं। हमें देखें और वे शांत हो जाएं, स्मृति स्वरूप बन जाएं, अव्यक्त रूप में आ जाएं, ये है स्थिति का प्रभाव। उसके लिए अभ्यास चाहिए और बाबा ने हमें 6 मास दिए हैं। बाबा के सामने कल हम सब बैठेंगे और हमें 6 मास किए हुए होमवर्क का रिजल्ट अपनी स्थिति से, चेहरे से बाबा को बताना है। ये सत्य दुनिया नहीं जानती है कि हर वर्ष स्वयं भगवान आदि पिता ब्रह्मा के साथ आते हैं और सन्मुख हम आत्माओं से मिलते हैं। दुनिया नहीं जानती है पर हम जानते हैं। जितनी बार ये स्मृति करते हैं रोमांच खड़े हो जाते हैं कि सच में हम सन्मुख बाबा से मिलते हैं। ड्रामा की ये सर्वोत्तम घटना 5000 वर्ष के ड्रामा में देवात्माएं आए, धर्मात्माएं आए, महात्माएं आए, कितने न विशेष आत्माएं आते रहे हैं, पर संसार की सबसे उत्तम घटना किसको कहेंगे? स्वयं भगवान आते हैं और हम उनके साक्षी हैं, हम उनके अनुभवी हैं। पिछले सीजन में बाबा ने कहा था, लास्ट मिलन में या एक मुरली में, कि संगम युग की अलौकिक सौगात ये प्रभु मिलन है, जो और कोई युग में नहीं होते। पर उस मिलन का अनुभव और आनंद हम बच्चे उठाते हैं, दुनिया को इस घटना का पता नहीं। जितना हम सेंसिबल बनते हैं, निश्चय बुद्धि बनते हैं, उस समझ भाव और प्यार से बैठते हैं, क्योंकि रोज हम मनोमिलन मनाते हैं और रोज जो मनोमिलन मनाता है वो ही सन्मुख मिलन का आनंद ले पाता है। खुशी होती है कि रोज जिसको मैं याद करती हूं वो आज सन्मुख आएगा। और हमारा पुरुषार्थ, क्योंकि हम भक्त आत्माएं नहीं है जो सिर्फ देखकर खुश हो जाए, हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं, हम लक्ष्यधारी आत्माएं हैं। बाबा से मिलन मनाकर उस मिलन का अतींद्रिय आनंद लेकर हमें तो बाबा से बहुत कुछ प्राप्तियां भी कर लेनी है, और हमारी अल्टीमेट प्राप्ति वो ही है कि हमें बाबा जैसा बनते जाना है। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि सिर्फ मम्मा मम्मा कहना नहीं है, मम्मा जैसा बनना है, मम्मा जैसा योग्य बनना है, उनके जैसा ज्ञान समझाना है। सिर्फ मम्मा की महिमा नहीं करनी है पर मम्मा जैसा बनना है। सेम बाबा से मिलन मनाकर सिर्फ खुश हो जाना नहीं है, बेशक वो खुशी की बात है, अतींद्रिय आनंद की बात है, परम सौभाग्य की बात है, कि हम इन आंखों से और ज्ञान युक्त बुद्धि से मिलन का आनंद लेते हैं, बाबा का चमकता तेजोमय चेहरा और उनकी दृष्टि में जो रूहानियत की शक्ति, कल्याण का भाव और हम आत्माओं के लिए जो तरस और प्यार, सिर्फ अव्यक्त बाप दादा का आगमन, बाबा का आना, बाबा को देखते ही ये प्राप्तियां होती। अन्य आत्माओं से और युग में और जन्मों में भी मिल सकेंगे, पर परमात्मा से मिलन इसी युग में और केवल इसी जन्म में ही हमें मिलता। इसलिए औरों से मिलना बाकी रह भी जाए तो कोई बात नहीं, बाकी जन्मों में चांस है, पर बाबा से मिलन, बाबा ने कहा था कि याद करना ये सभा, ये बाबा का मिलन, ये हाथ उठाना, ये सब याद रखना उस समय। कि स्वयं भगवान ने हमें बार बार प्रोत्साहित किया है, बाबा भी जानते हैं कि बनना माना एक लंबे समय का पुरुषार्थ है, और वो पुरुषार्थ अंत तक करते रहना ही हमारा सच्चा फॉलोअप है, सच्चा हमारा पुरुषार्थ है। पर जितना हम जिगरी वो पुरुषार्थ करते हैं, फॉलोअप करते हैं, उतना हम सबकी अवस्था बनती जाती है। कि परमात्मा मिलन मनाने वाली आत्माएं कैसी हो सकती है, जिनके भी परमात्मा याद के चेहरे बताते हैं भक्ति में, चाहे भक्तों के, संतों के, योगियों के, धर्मात्माओं के, उनके चेहरे और नयन बताते हैं कि कोई परम की याद में है। इस प्रकार हम नित्य बाबा से मिलन मनाते हैं, नित्य बाबा की याद में बैठते हैं, तो हमारे नैन, चैन, चेहरा, चलन नेचुरली दिव्य बनते जाते हैं। खुद भी महसूस करेंगे, दूसरे भी महसूस करेंगे। इसलिए बार बार ये मूल लक्ष्य हमें याद आता रहे कि मधुबन विशेष किस बात के लिए, हम यहां विशेष किस लिए आते। ये अक्टूबर से मार्च की सीजन हम विशेष बाबा से मिलने आते हैं। और एक बाबा के निमित्त कितनों से मिलन होता है, इतने बड़े ईश्वरीय परिवार से मिलन होता है, देश विदेश के भाई बहनों से मिलन होता है, हमारे सभी वरिष्ठ दादियां दीदियां दादाएं बड़े भाई बहने उनसे मिलना होता है। इवन स्थूल प्राप्ति भी देखे तो बाबा के निमित्त कितनों से मिलना होता है। पर ये मूल चीज हमें सदा याद रहे कि हमारा मुख्य मिलन प्रभु मिलन है, बाबा से मिलन, बाबा के सदके हम आपस में मिले हैं। इसलिए हमारे प्रतिदिन के जीवन में और सबसे मिलना महत्वपूर्ण न बन जाए, बाबा से मिलना महत्वपूर्ण रहे, ये हमें सदा ध्यान देना है ना। कई बार ऐसा होता है कि बाबा के कारण हम सबसे मिले और सबसे मिलने में बाबा ही भूल जाता है या बाबा ही एक तरफ रह जाता है, परंतु नहीं, बाबा हमेशा कहते हैं मधुबन इतना बेहद का घर बाबा ने किस लिए बनवाया कि बच्चे आकर यहां आराम से रहे, शांति से रहे, दुनिया के लफड़ों और झंझटों से मुक्त होकर। और भी एक शब्द बाबा बोलते हैं, गोरख धंधों से फ्री होकर यहां साइलेंस का अनुभव करे, बाबा की याद का अनुभव करे और अपने आप को रिचार्ज कर ले। बाबा ने इतनी बड़ी व्यवस्था इसलिए बनवाई कि यहां आकर हम और अच्छा पुरुषार्थ कर ले। सेंटर में अक्सर मन में रहता है कि घर के कामों के लिए भागना पड़ता है, नौकरी के लिए भागना पड़ता है, शांति से बैठ भी नहीं पाते हैं, पुरुषार्थ भी नहीं कर पाते, वहां मन में ये कंप्लेन रहती है। यहां तो कोई बात नहीं है, यहां हमें अपना सच्चा स्वदर्शन होता है कि यहां तो और कोई झंझट नहीं है और कोई लफड़े नहीं है और कोई घर के काम नहीं है, नौकरी धंधा नहीं है, यहां मैं याद का आनंद कितना ले रहा हूं। और बाबा प्रति वर्ष 69 से लेकर आप देखिए अब तक 2015 हो गया और 2016 की ये सीजन, 47 वर्षों से अव्यक्त होने के बाद भी बाबा हमें अव्यक्त पालना देता रहा है और बाबा हमें गाइड करता रहा। 33 ईयर्स साकार द्वारा जो मुरलियां चली, जो आज भी नित्य हम सुनते हैं, और साकार मानव जीवन की छोटी छोटी हर बात बाबा ने हमें सिखाई। जैसे आज भी बाबा ने कहा, रुठना नहीं है, रुसना नहीं है, चेहरा बिगाड़ना नहीं, माना कितनी छोटी छोटी बातें बाबा ने हमें सिखाई है। एक सच्चा मानव बनने की बात आज बाबा ने कही ना, कि सच्चा मानव माना देवता। दुनिया में लोगों को जब हम ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, तो अक्सर लोग क्या कहते हैं कि मानव मानव बने तो भी बहुत है, ऐसे बोलते हैं ना। पर उनको पता नहीं है कि सच्चा मानव तभी बनता है जब पवित्र और योगी बनता है। पवित्र और योगी बनना सच्चा मानव बनना है। इससे हम सही अर्थ में एक इंसान कैसा होना चाहिए, जो नियम धारणा मर्यादाएं पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं कि ये तो आदर्श की बातें हैं, बहुत ऊंची बातें, जबकि सत्यता ये है कि ये सब धारण करना ही सच्चा मानव बनना है। इसलिए ब्राह्मण बनने के बाद फिर उत्तम पुरुषार्थ की बातें आती है, देवता बनने की बात। ब्राह्मण जीवन की धारणाएं, पवित्र योगी जीवन जो बनता है वो एक सच्चे मानव बनने का पुरुषार्थ, और उसके बाद फिर हमारा और आध्यात्मिक ऊंचाई का पुरुषार्थ वो है जो बाबा कहता है फरिश्ता और देवता बनने का पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कराने वाला खुद अव्यक्त बन गया, फरिश्ता बन गया, और उनसे नित्य पढ़ने वाले है ना, 47 वर्षों से अव्यक्त पालना लेने वाले हमें अब अपने आप में देखना है कि हम कितना अव्यक्त बने, कितना फरिश्ता बने। ब्राह्मण बनने के बाद क्वालिटी ब्राह्मण बनना, जो अव्यक्त रूप से बाबा सिखा रहे हैं उसे बाबा फरिश्ता बनना कहते हैं। और बाबा आएंगे, पढ़ाई तो आगे ही चलेगी ना, हर सीजन में बाबा आते हैं और नई ऊंचाई हमें बताते हैं। पिछला होमवर्क मैंने किया नहीं किया, बाबा रुकेगा थोड़ी, बाबा तो आगे की ही पढ़ाई सिखाएगा। इसलिए 6 मास बाबा पढ़ाते हैं, 6 मास होमवर्क के लिए देते। बाबा ने एक और होमवर्क दिया था कि संपूर्ण बनने का सोच अविनाशी रखना, कोई भी कारण से संपूर्ण बनने का, बाप समान बनने का लक्ष्य ढीला नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सूक्ष्म में मन बदलता रहता है, जितना हो सकता है कर रहे हैं, करेंगे, ऐसे सोच लेते हैं, माना लक्ष्य ढीला हो गए। चलो अब व्यर्थ में नहीं जाते हैं, संगम के अंत के जिस समय पर हम पहुंचे हैं उस समय पर मैं समझती हूं कि अब ये व्यर्थ हम नहीं सोचते हैं और ये शोभा भी नहीं देता है ये बोलना या कहना या सोचना कि कौन बना है, कौन बना है, हर किसी में ये सब सोचना बहुत स्थूल लौकिक बातें लगती है। लगता है हम ज्ञान योग की पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे, हरेक में कमी है, पुराने ऐसे, महारथी ऐसे हैं, समर्पित भी ऐसे हैं, ये सब सोचना बताता है कि हम खुद लक्ष्य में स्थित रहे। इसलिए अब वो विचार तो आने ही नहीं चाहिए। पर बाबा ने कहा कि खुद की भी हिम्मत और उमंग इतना रहे कि संपन्न समान बनने का संकल्प अविनाशी रहे, बदलना नहीं चाहिए। जितना ऊंचा बाबा, जितनी ऊंची पढ़ाई, उतना ऊंचा हमारा लक्ष्य। और हम सभी भी चाहते हैं उस ऊंचाई को प्राप्त करना। और जो आध्यात्मिक रूप से ऊंचा बनेगा, भौतिकता, धन, साधन, सुविधाएं, मान, स्थान, वो तो ऑटोमेटिक आता है, उसके लिए मेहनत करनी नहीं होती, हमें योग्य बनना होता है। योग्य आत्मा जहां भी है अपने आप मान शान स्थान को प्राप्त होती है। इसलिए अब संगम के आखिरी समय में या अब आगे के शेष ब्राह्मण जीवन में दिन रात यही धुन और लगन रहे कि बस बाबा की याद में बाबा जैसा बनते जाना है। अंत तक इसी मिलन, याद, स्मृति का आनंद और सुख हमें महसूस करना है। मैं समझती हूं कि अब संगम का समय इस सुख और आनंद का समय, मेहनत के दिन पूरे हो गए, युद्ध के दिन समाप्त हो गए, ये हम सबने सेवा के लिए ईश्वरीय परिवार को बेहद का बनाने के लिए, दुनिया के आगे विद्यालय को प्रत्यक्ष करने के लिए सही अर्थ में पुरुषार्थ किया। अब तो रिजल्ट आ गया है कि हम विश्व के सामने हैं, बेहद का परिवार है, सबकी नजरों में हम हैं और हमें सबकी आशाएं हैं। अब सच्चा समय है कि अब हम उस याद के सुख में, मिलन के आनंद में, अलौकिक स्थिति के आनंद में रहे ताकि आत्माओं को ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति हम करा सके। जो बाबा कहते हैं ना जय जयकार, अब वो ही समय। और जो सतयुग का हम गायन करते हैं अब प्रैक्टिकल वो स्टेज का समय कि सतयुग में अपार वैभव, अपार सौंदर्य। बाबा कहते हैं हर कोई सुंदर होगा, कोई टेढ़ा बांका नहीं होगा। और अपार सत्ता, विश्व के मालिक हम होंगे। तो सतयुग का गायन हम करते हैं कि अपार धन वैभव, अपार सौंदर्य, अपार सत्ता पावर होने के बाद भी देवताएं निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, नेचुरल आत्माभिमानी, कर्मेंद्रिय जीत। माना ये कितनी बड़ी ऊंची सिद्धि है। अक्सर लोग कहते हैं कि इन चीजों से लोग चलित हो जाते हैं, पावर आने के बाद, पोजीशन पाने के बाद व्यक्ति बिगड़ जाता है, स्पॉइल हो जाता है। दुनिया में तो यही कहते हैं। मैं समझती हूं अब वो धारणा, वो स्थिति अभी संगम युग में हमारी चाहिए। अब सेवा का रिटर्न हमें मिल रहा है, बाबा के सेंटर्स, चाहे बाबा के बच्चे, बाबा ने सबके भंडारे और भंडारी भरपूर किए हैं, सबके, हर ब्राह्मण आत्मा के। और खुद अपना इतिहास हर कोई देख सकता है कि आए तब क्या थे और बाबा ने कहां तक पहुंचा दिया है। अब सेवा का रिटर्न मिल रहा है, मान शान स्थान सब कुछ मिल रहा है, सुविधाएं साधन। भगवान ने संगम युग में सिर्फ पुरुषार्थ नहीं कराया, सिर्फ त्याग नहीं कराया, प्रत्यक्ष फल भी दिया है, भाग्य भी दिया है। भाग्य भी बनाया, जीवन भी बनाया, व्यक्तित्व भी बनाया। अब इन प्राप्तियों के बीच, वाहवाही के बीच, सफलता के बीच, अब हमें निर्लेप, अनासक्त, अचल, न्यारा, प्यारा अब रहना है कि अब ये चीजें हमें स्पॉइल ना करें। और इनके बीच हम उस एक के मिलन और संबंध के सुख में रहें। जैसे भक्ति में दिखाते हैं कि रावण की लंका में, लंका की शोक वाटिका में, राक्षसों के बीच सीता एक राम की याद में रही, सुरक्षित और सलामत। ऐसे हम बाबा के बच्चों ने इस कलियुगी दुनिया के बीच रहकर हम सब एक बाबा के बने रहे, उस याद और पवित्रता के बल ने हमें मायावी प्रभाव से मुक्त रखा। अब ये स्टेज, अभी ये सतयुगी स्टेज, कि हमने जो वो साधना की और जो सफलता हमें मिली है, विकास, संख्या, मान, स्थान, सुविधाएं, साधन, ये जो सेवा का रिटर्न बाबा दे रहा है, हमें उसके बीच अपनी अलौकिकता, रूहानियत, स्मृति स्वरूप उस आनंद और सुख में रहना, ये है अतीन्द्रिय आनंद। अब ये प्रैक्टिकल खुद में देखना है कि मुझे इन प्राप्तियों से प्रभावित ना होकर उसके बीच भी मुझे न्यारा प्यारा निर्लेप रहना है। ये प्रभु मिलन का रिजल्ट हमें अपने जीवन से बाबा को दिखाना है। और देखो, अब तक बाबा कहते और हम करते, बाबा हर श्रीमत बताते रहे हैं, हम करते रहे। अब आप देखिए, समय ड्रामा का वो चल रहा है जब समय लोगों को कहता है, समय की पुकार है, समय की मांग है कि अब यही जीवन चाहिए, पवित्र योगी जीवन ही सेफ जीवन। आज कुमारियों के साथ भी बात हुई कि आज दुनिया में भी हर कोई कह रहा है कि खुद शक्ति स्वरूप बनो, खुद शक्ति स्वरूप बनो, अपनी सेफ्टी खुद करना है। और इसके लिए कितना सिखाया जा रहा है, चारों ओर महिला सशक्तिकरण, किसान सशक्तिकरण, युवाओं के, गांव वालों के, है ना, सब चारों ओर ये सिखाया जा रहा है जो बाबा ने सालों से हमें सिखाया। तो हमें खुशी होती है कि अब समय मजबूर कर रहा है कि इन नियम मर्यादा धारणाओं में रहकर शक्तिशाली बनो। और हमें भगवान ने कहा और हमने किया, तो आज संसार के बीच हम सब एग्जाम्पल है। अब हमसे प्रेरणा लेते हैं, शक्ति लेते हैं कि देखो इन्होंने किया है, हमें भी ऐसा करना चाहिए। धीरे धीरे ड्रामा कैसा टर्न हो रहा है, यहां ही बाबा हमें गायन योग्य और दर्शन योग्य बना रहा है। इसलिए जितने भी दिन हैं संगम युग के, है ना, हमारे लिए तो अंत तक संगम युग है। विनाश का पीरियड हो, परिवर्तन का पीरियड हो, कुछ भी हो, हमारा तो संगम युग, मिलन का युग है। उस मिलन के सुख और आनंद में अंत तक रहना है। एक बार दादी गुलजार जी बिजनेस विंग की मीटिंग में आई थी और कई भाई बहनों ने, चूंकि व्यापारी भाई बहने थे बाबा के बच्चे, तो उन्होंने दादी से पूछा कि दादी समय के अनुसार आप क्या कहते हैं, हम बिजनेस समेट लें, बिजनेस बढ़ाएं या क्या करें, है ना? दादी ने इतना नेचुरल प्रैक्टिकल जवाब दिया, क्योंकि अक्सर हमारी बुद्धि में यह है कि विनाश का कुछ पता चले तो हम समेट के बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। दादी ने बताया कि जीवन के लिए, परिवार के लिए, यज्ञ के लिए जो जरूरी है वो नौकरी धंधा कामकाज तो अंत तक करना है। हमें अंदर से अपनी स्थिति को बनाकर रखना है, जो कुछ बाबा कह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो टाइम कॉन्शियस बनने के लिए नहीं कह रहे। ऐसा नहीं है समेट कर बैठ जाएंगे और स्थिति बन जाएगी, नहीं। जो हमारा ड्रामा में रोल है लौकिक अलौकिक जीवन में, वो रोल हमें प्ले करते रहना है, पर मुझे अंदर से अपनी मन की स्थिति को समेट कर निरंतर याद की स्थिति में रहना। इसलिए समय का लिमिट बुद्धि में आनी ही नहीं चाहिए कि कब तक पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ ही जीवन है, पुरुषार्थ में ही आनंद है। सत्य को समझना, सत्य को अभ्यास में लाना, सत्य का स्वरूप बनना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनना, उसी में आनंद और सुख है। इसलिए संगम युग की ये अलौकिक सौगात, भगवान से मिलना, पढ़ना, पालना पाना, उनके वरदानों से खुद की झोली भरना, इस सुखमय जीवन में पूरे आनंद के साथ, खुशी के साथ, उमंग उत्साह के साथ हमें चलते रहना है, बल्कि हमें अपने स्वरूप से, दृष्टि से, वाणी से, संकल्प से अब आत्माओं को भी अनुभूति करानी है, तो बाकी बातों में ध्यान ही नहीं जाएगा। मैंने शायद सुनाया है कि एक बार एक आइलैंड का पता चला वैज्ञानिकों को कि ये आइलैंड फलाने दिन पूरा डूब जाएगा, ऐसी सुनामी आएगी कि वो आइलैंड पूरा डूब जाएगा, और वहां जो रहने वाला जो पूरा देश था, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर हम ये बताएंगे तो लोग तो दुखी हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, और हमें भय चिंता की स्थिति से मरना नहीं है। तो उन्होंने कुछ भी कहा नहीं, और उस दिन ऐसा अच्छा महफिल संगीत संध्या और रखी कि लोग उसी आनंद में, खुशी में, और उसी बीच सुनामी आके वो पूरा आइलैंड डूब गए। तो बाबा भी हम बच्चों से क्या चाहते हैं, परिवर्तन होना है, वहां विनाश होना है, ये ड्रामा की निश्चित भावी है, परिवर्तन होना है, पर उसके दुख का एहसास ना हो और हम आनंद, खुशी और मिलन की अनुभूति में हमें जाना है, इसलिए बाबा हमें कभी भी डेट नहीं बताता है, है ना। कितने भाई बहने सोचते हैं कि बाबा बताए बताए, पर नहीं, डेट बताना माना टेंस होना, है ना। बीच में आपको पता है 21 दिसंबर 2012 का विनाश कितना टीवी पर बार 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 आता था, जिससे और ही लोग टेंशन में आ गए। अमेरिका गवर्नमेंट ने कहा कि ये दिखाना, भारत के मीडिया को कहा कि बार बार दिखाना बंद करो, आप लोगों को टेंशन में ला रहे हैं, है ना। तो दुनिया के लोग भी समझते, तो बाबा हमें टेंशन में थोड़ी लाना चाहते हैं, विनाश कॉन्शियस बनाना नहीं चाहते है ना। हमें तो याद के आनंद में लवलीन होते अपने घर पहुंच जाता है, है ना। इसलिए जो जरूरी है बाबा खुद आकर सब कुछ हमें बताते हैं, इसलिए आनंद और सुख के अनुभव में जाना है। अभी भी हम एक जगह गए थे तो एक ने प्रश्न पूछा, आजकल वो नासा के द्वारा कुछ अनाउंस हुआ है कि 15 नवंबर से 30 नवंबर सूर्य उगेगा नहीं, तो लोग टेंशन में फिर हलचल में, वो बातें झूठी भी अब तो सिद्ध हो गई। तो उन्होंने पूछा कि बाबा इस विषय में क्या कहते हैं। हमने कहा सूरज उगे या न उगे, हम रहे या न रहे, हमें तो बाबा की याद में रहना है, आनंद में रहना है। हम जिएंगे तो भी सेवा करेंगे और जाएंगे तो भी सेवा ही करेंगे। हमारा धंधा फायदे का ही है, इसलिए हमें सोचना भी नहीं है इन बातों को, चिंता भी नहीं करनी है। जो करना है, भगवान ने जो कहा है वो करने में आनंद है, और वो ही हमें सबको सिखाना है। ओम शांति। तीन मिनट बहुत प्यार से, ऐसा बाबा में मगन हो जाओ जो बाबा कहते हैं जैसे सृष्टि है ही रहे, कोई चूर पुर नहीं।